लिसनर्स सुन रहे हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ आज के पीसीपी में। और आज का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी है। इससे पहले जो चैप्टर्स हमने डिस्कस करा है उसमें फोर्स एक चैप्टर था जिसमें हमने ये देखा था कि फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी वस्तु पे तो उसमें मोशन में उसके चेंजेस आते हैं, उसका जो मोशन है उसमें कुछ चेंज आता है, मोमेंटम चेंज होता है। तो वो तो मोमेंटम चेंज होता है पर जब उसका मोशन चेंज होता है उसमें साथ साथ ये भी होता है कि उस वो कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होता है, इट मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस। तो वो जो डिस्टेंस मूव करता है वहीं से आता है हमारा कॉन्सेप्ट वर्क का। वैसे तो हम डेली लैंग्वेज में जो हमारे एवरीडे लाइफ में हम बोलते हैं हमने ये काम किया वो काम किया, तो काम तो हम बहुत करते हैं, और हमारे जो लेमेन लैंग्वेज में हम काम क्या है और साइंस वर्क को कैसे डिफाइन करता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी, एनर्जी भी हम बहुत यूज करते हैं, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई या मेरे को अभी काम करने का मन नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी टर्म हम यूज करते हैं तो वो भी कैसे साइंस में यूज होता है और वर्क एनर्जी कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करेंगे। और एनर्जी के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हमारे चारों तरफ हम बहुत टाइप के एनर्जी यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी आता है, हम यूज नहीं करते हैं पर वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है वो है लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी और इन लोगों की एक दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक टर्म आएगी साइंटिफिक टर्म, वो है पावर। तो कितनी जल्दी आप वो काम, किसी काम को कितनी जल्दी करना चाहते हैं उससे पावर टर्म आता है। तो ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं हम वर्क पे। तो हम जब डेली काम करते हैं या बात में कहते हैं कि मैंने आज दौड़ वर्क करके आया या खाना खा के आया, खाना खाना भी एक वर्क हो जाता है, बोलना भी एक काम होता है, पढ़ना भी एक काम होता है हमारे लिए। बट जब हम साइंस में आ जाते हैं, साइंस वर्क को कैसे डिफाइन करता है, वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स के वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होता है, तब जाके हम कहेंगे कि उस फोर्स ने कुछ काम किया या ऑब्जेक्ट, सम वर्क इज़ डन बाय द ऑब्जेक्ट। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है तो वर्क डन नहीं होता है। हम अपने लिए मेन लैंग्वेज में तो कहते हैं आप एक वर्ल्ड को धक्का दे रहे हैं, बहुत एनर्जी आपके खर्च करते हैं और वर्ल्ड को धक्का देते हैं, आप वो काम कहते हैं। पर क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, आपने फोर्स अप्लाई किया बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वर्ल्ड का, तो वर्क डन भी ज़ीरो है, उस केस में आपने कोई काम नहीं किया। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आपने फोर्स अप्लाई किया, एक बॉडी रेस्ट में है, तो आप उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करता है, पर आप अगर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो मूव नहीं करेगा। अगर फोर्स ही ज़ीरो है, फोर्स ही अप्लाई नहीं हुआ तो वर्क डन ज़ीरो है, नो डाउट। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे कि एक कार मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे, तो उसमें भी वर्क डन नहीं होता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, वर्क डन नहीं होता है, तो यहाँ आप कहेंगे कि पेट्रोल खर्च हुआ इतना वो मूव करने में, तो वो कहाँ गया? तो वो जो पेट्रोल आपका कंज्यूम हो रहा है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी, और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट में काम करके वेलोसिटी को मेंटेन करने में खर्च हुआ। तो इसमें क्योंकि फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो आपका जो वर्क डन है उस केस में भी ज़ीरो है। अगर एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो वो कोई काम नहीं कर रहा है, ये हमने कहा। और जो फ्यूल कंज्यूम हुआ वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में खर्च हुआ। तो और एक केस है जिस केस में वर्क डन जीरो होता है, वो है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। उस केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है फोर्स के डायरेक्शन में, दैट इज़ ज़ीरो। एक्चुअल जो वर्क हमने डिफाइन करा है वो ये है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का अगर कोई कंपोनेंट है तो उन दोनों का, उस कंपोनेंट और फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है, दैट इज़ वर्क डन। तो अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, वो हायर क्लास में आप जाएंगे तो कंपोनेंट क्या होता है आप पढ़ेंगे। तो अगर हमने ऐसे कह दिया कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब जाके वर्क डन है, उस डायरेक्शन में नहीं भी हो रहा है, उसके साथ कुछ एंगल करके भी हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तब भी वर्क डन होता है। पर आपको देखना पड़ेगा कि एंगल क्या है। इफ़ एंगल इज 90 degree, दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस ऑल्सो वर्क डन इज ज़ीरो। सपोज कोई कूली है जो सर पे कोई भारी सामान उठा के जा रहे हैं, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज़ीरो, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट वो आगे चल रहे हैं और जो वेट है दैट इज डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो इस केस में यहाँ काम कर रहे हैं, भारी सामान उठा के जाना बहुत बड़ा काम है, उसके लिए आप पे करते हो लेबर के लिए, बट साइंटिफिकली अगर आप देखो तो वो वर्क डन इज ज़ीरो इन दैट केस। तो साइंटिफिक टर्म जो वर्क के लिए है वो यही है कि फोर्स अप्लाई है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर फोर्स ज़ीरो है देन ऑल्सो वर्क डन इज ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, आइदर ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो देन वर्क डन इज ज़ीरो। दोनों ज़ीरो नहीं हो के भी कौन कौन से केस में वर्क डन ज़ीरो होगा ये हमने डिस्कस किया। अब वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट पता है तो मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है जितना भी है, दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट कॉम्पोनेंट दैट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फोर्स itself is known as work done। तो W work done का जो सिंबल हम लेते हैं W is equal to force into displacement in the direction of the force। हमेशा ये बात को याद रखना है कि displacement in the direction of force directly हम multiply नहीं कर सकते। अगर दोनों same direction में है तो आप directly multiply कर सकते हैं, पर अगर same direction में नहीं है force displacement तो आपको कैसे वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, आपके एक फिगर दिया हुआ है, आप अगर बुक लेके बैठे हैं तो बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 296 फिगर नंबर 13.2, उसमें एक फोर्स अप्लाई हुआ, डिस्प्लेसमेंट पी क्यू है और फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट है, दैट इज़ नॉट 90 degree, वो अलग है, कुछ एंगल है दोनों के बीच में। तो इस केस में आप कैसे निकालेंगे, आप पी क्यू जो है क्यू से फोर्स को आप आगे एक्सटेंड करें, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें फोर्स के ऊपर, और पी से उस परपेंडिकुलर को का जो फुट है वहाँ पे जितना डिस्टेंस हुआ, हियर इट इज़ पी आर, तो ये जो पी आर डिस्टेंस है इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट पी क्यू है पर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पी आर है। तो आपको ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू पी आर, तो दैट विल बी द वर्क डन। तो ये था वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन है। तो वर्क डन जो है उसका एक यूनिट होगा, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। तो इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट, फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जूल, जे ओ यू एल ई, ये साइंटिस्ट एक थे जूल, उनके नाम से आया है ये यूनिट, और इसको कैपिटल जे के हिसाब से हम डिनोट करते हैं। तो वन जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वन जूल को आप डिफाइन कैसे करेंगे, कभी भी हम किसी यूनिट को जब डिफाइन करते हैं वन जूल वन न्यूटन, तो हम जो फॉर्मूला है वन जूल वर्क, जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड वन जूल इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर। तो इसी को ही हम डिफाइन कर लेंगे वर्ड्स में, इसी को ही हमें बोलना है। तो आप लिख सकते हैं वन जूल वर्क इज डन व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ वन मीटर अंडर ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में आपने वन न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, और ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में अगर वन मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज वन जूल। तो ऐसे ही आप कोई भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, उसके फॉर्मूला अगर आपको याद है। अब वर्क डन और एनर्जी, हमारा जो चैप्टर आज का है वर्क एंड एनर्जी, तो ये वर्क डन और एनर्जी कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जब आप काम करने जाते हो या कभी खेल के आते हो, तो खेलने के बाद बहुत ज़्यादा खेल लिया तो आप, तो आज मेरे को टायर्ड लग रहा है, मैं थक गया, मेरे पास और एनर्जी नहीं है, और खेलो, या और उसके बाद कुछ काम करने के लिए दिया जाता है तो आप बोलते हो आप मैं टायर हो गया, मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो ये वर्क और एनर्जी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, क्योंकि फिर अगर आपको थोड़ा सा खाना पीना कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर आपको उठ के खेलने का या काम करने का एनर्जी मिल जाता है, तो ये एनर्जी मिलने के बाद आप काम कर सकते हो। दैट मीन्स वर्क इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। किसी ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, वो कितना एनर्जी पोजेस करता है, उससे डिटरमाइन होता है। अगर उसके पास एनर्जी है तो वो काम कर सकता है, नहीं है तो नहीं काम कर सकता है। तो जितना आप काम करते हो, जब भी आप काम करते हो, आप उसमें कुछ एनर्जी स्पेंड करते हो, कुछ एनर्जी आपका खर्च हो जाता है, और काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है। तो कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। अगर उसके पास एनर्जी है देन इट विल बी एबल टू वर्क, अगर उसके पास नहीं है इट विल नॉट बी एबल टू डू वर्क। तो कुछ अमाउंट ऑफ 100% डिलीवरी नहीं होता है, जितना एनर्जी है वो उसको 100% आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, फ्रूटफुल वर्क आउटपुट के हिसाब से। जब इंजन के बारे में हम बात करते हैं, हीट इंजन हो गया, कोई भी आपका मशीन है, उसको आप जितना एनर्जी देते हो वो 100% आउटपुट नहीं दे पाता है, क्योंकि जो इंजन के काम करने में भी कुछ फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी जो वो हीट के हिसाब से निकल जाता है। तो ये एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन था। तो अगर आपके पास एनर्जी है आप वर्क कर पाते। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की जो हम बात कर रहे थे शुरू में, एनर्जी के फॉर्म्स क्या हैं, आप जो काम करते हो आपके पास एनर्जी कहाँ से आता है? आप मस्कुलर काम करते हो, मैकेनिकल वर्क करते हो, तो आपको खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिलता है। तो हमारा जो खाना हम खाते हैं दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी से हमें मस्कुलर एनर्जी काम करने के लिए मिलता है। तो हमारा जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड। फैन आप चलाते हो, फैन चलता है वो किस में चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिक, वो रोटेशनल एनर्जी जो फैन चलता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज करते हो। आपने कभी मैग्नेट के साथ खेला होगा, जब हम मैग्नेट को किसी लोहे के कील के पास ले आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये कैसी एनर्जी है? ना ही ये केमिकल एनर्जी, ना आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये अलग टाइप का है, ये मैग्नेटिक एनर्जी। वो जो मैग्नेट है उसमें एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो आयरन ऑब्जेक्ट को, आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक एनर्जी। हमने सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे जो एटम्स हैं एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी, न्यूक्लियस के अंदर जो मास है दैट मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो ऐसे बहुत टाइप, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी जो हम यूज करते हैं। तो हमें लाइट एनर्जी मिलता है मेनली सन से मिलता है, और दूसरी है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके लाइट में कन्वर्ट करते हैं। जो घर में आपके बल्ब चलता है वो भी लाइट देता है, बट दैट यूजेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में हम मेनली जो एनर्जी के बारे में बात करते हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो जो ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे, लेसन्स आएंगे, वो इंडिविजुअल एक एक टाइप ऑफ एनर्जी को हम डील करेंगे। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए हम बात करेंगे व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जो हम मैकेनिकल काम करते हैं उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो किसी बॉडी, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, किसी भी बॉडी का मैकेनिकल एनर्जी मतलब इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसका जो पोजिशन है उसके वजह से उसमें जो एनर्जी होता है, या फिर वो मूव कर रहा है उसके वजह से उसके पास जो एनर्जी है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये पोजीशन की बात जो हम कर रहे हैं, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन की वजह से होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम सोचेंगे कि पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है। सपोज आपने एक हैमर को उठा लिया, थोड़ा सा ऊपर उठा लिया और फिर आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा? गिर जाएगा वो। अगर उसको आपने एक क्ले के ऊपर गिराया, वो एक क्ले के ऊपर गिरा या किसी कांच का प्लेट है उसके ऊपर गिरा, तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। तो वो तोड़ने के लिए, अगर आपने वो नहीं गिराया होता और उसको तोड़ना है तो आपको उसको मारना पड़ता, उसमें भी आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ वर्क करने के बाद जाके वो टूटता। तो जो आपको, आपने हैमर को उठाया और फिर छोड़ दिया है, आपने फेंका नहीं, आपने कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करा, आपने सिर्फ छोड़ दिया, तो वो छोड़ने के बाद जो वो गिरा उसमें, उतने पोजीशन तक जब आपने उठाया है आपने कुछ काम किया एंड दैट वर्क इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी। तो वो जब गिरता है तो उसमें वो एनर्जी है, तब जाके वो उसको, वो कांच या क्ले जो भी आपने नीचे रखा है उसको तोड़ने में वो कैपेबल है। तो ये बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन जो एनर्जी उसमें थी। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल जो है वो है आपके घर, जो आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, पहले आती थी चाबी देना होता था, एक चाबी उसमें चाबी होती थी, उसको हम मोड़ते थे, तो वो क्या होता है एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होता है, तो हम जब उसको घुमाते हैं वो स्प्रिंग को हम घुमा के एक पोजीशन दे देते हैं, एक उसके स्टेट में चेंज लाते हैं, तो वो फिर घूम घूम के घड़ी को घुमाने में सफल होता है। तो ये जो हम उस घड़ी को चाबी को घुमा रहे हैं तो हम कुछ वर्क कर रहे हैं, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग ऑफ द वॉच। तो जब फिर वो उस एनर्जी को यूज करके फिर घड़ी को घुमाता है, तो वो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से उसमें स्टोर होता है। तो ये है एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। अगेन आता है, हाँ, तो इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि जो हमने उठाया था हैमर, या दो अलग अलग हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, एक भारी है एक लाइट है, और दोनों को हमने सेम हाइट से गिराया, तो क्या होगा, सैंड के ऊपर गिराया, एक रेत के हिप पे गिराया, तो देखेंगे जो भारी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा डीप चला जाएगा और जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो कम डीप तक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भारी ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा एनर्जी थी, ज़्यादा डिस्टेंस उसने मूव किया, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, वेट के ऊपर। अगेन सेम ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट हाइट से गिराएंगे, एक को कम हाइट से एक को ज़्यादा हाइट से, तो देखेंगे कि जो कम हाइट से गिराया है वो कम डीप तक जाएगा, जो ज़्यादा हाइट से गिराया है वो ज़्यादा अंदर तक चला जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं mg into h, mg इज वेट ऑफ द बॉडी एंड h इज हाइट, जहाँ तक आपने उसको उठाया। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, m इज मास ऑफ द बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जहाँ तक आपने उठाया। तो उस हाइट के ऊपर उसमें एनर्जी कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी वैसे ही हम बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एक गाड़ी मूव कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, पानी फ्लो कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर फ्लोइंग वाटर में आप कोई पत्ता गिरा देते हो वो बह जाता है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख जाते हो तो वो बहा के ले जाता है। मेनली आप देखेंगे जब फ्लॉड होता है तो उसमें क्या होता है, इतना पानी की मोशन के वजह से ही इतना डिवास्टेशन हो जाता है। सो द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लोइंग वाटर, वो मूव कर रहा है तो उसमें एनर्जी है, ज़्यादा जोर से मूव कर रहा है ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है ज़्यादा एनर्जी है। तो इट ऑल्सो डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, और एनर्जी का भी जो यूनिट है वो भी जूल ही है, और उसका ऐसा यूनिट वर्क एंड एनर्जी बोथ आर मेजर इन द सेम यूनिट दैट इज जूल। बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर, और हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती थी। हम खाना खाते हैं वर्म्थ आती है बॉडी में, अदरवाइज बॉडी जब कोई मर जाते हैं जिसकी जिनकी डेथ हो जाती है बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो वो खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो वर्म्थ नहीं आते, वर्म्थ नहीं आती है हमारी बॉडी के जो प्रोसेसेस होते हैं वो नहीं चल पाता है। टेम्परेचर इज इनेविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये तो थर्मल एनर्जी जो हमें खाने से मिलता है। दूसरे जो थर्मल एनर्जी हमारे आसपास हम यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए भी हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है, वो हम चीज़ों को जला के पहले लकड़ी जला के हमें मिलता था, आजकल बहुत सारे जैसे कि गैस यूज करते हैं, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह यूज करके थर्मल एनर्जी हमें मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी दैट इज़ सन, सन से भी हमें गर्मी मिलती है, जिसके वजह से पूरा जो हमारा वर्ल्ड है सर्वाइव करता है। तो ये था थर्मल एनर्जी, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में आप थर्मल एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट फॉर्म्स कैसे यूज होता है। पर आप देखेंगे कि जब भी हमारे बॉडी से हीट बाहर जाता है तो हमें कोल्ड फील होता है, और जब बाहर से हमारी बॉडी में हीट फ्लो होता है, हीट एनर्जी फ्लो होता है, हमें गर्मी लगती है। तो ये जो सेंसेशन है इसको, और जिस एनर्जी के फ्लो के वजह से ये सेंसेशन हमें होती है, उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्ड वन इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी भी वही एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करता है। अगर लाइट एनर्जी नहीं होती है तो हम नहीं देख पाते। तो लाइट एनर्जी मेनली हमें मिलता है वही सन से, पर जो डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ लाइट एनर्जी हमें मिलती है वो है बल्ब, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। तो ये लाइट एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे लाइट एनर्जी चैप्टर में डिटेल्स में, कि लाइट एनर्जी को हम डिफरेंट, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे यूज होता है। फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो जो अब जो हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी यूज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहे हैं अब, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके। आपके घर में बल्ब जलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, आपके घर में एसी चलता है, कूलर चलता है, फ्रिज चलता है, इलेक्ट्रिक आयरन चलता है, माइक्रोवेव ओवन चलता है, सब कुछ हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चलता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, या तो जो आपके घर में सप्लाई आता है, सप्लाई जहाँ से आता है, या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आता है, या थर्मल पावर प्लांट से आता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत ही कम जगह इंडिया में अभी सप्लाई आ रहा है, पर मेनली हमारा थर्मल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अदर सोर्सेस जो अभी सोचा जा रहा है, दैट इज़ सोलर पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, तो ऐसे बहुत सारे अदर नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस भी हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में भी हम डिटेल में एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वन इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेट जब हम आयरन के पास लेकर आते हैं वो अट्रैक्ट करता है, तो इसमें एक एनर्जी रहता है, वो मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी है और वो अट्रैक्ट कर पाता है, वो वर्क करने के लिए कैपेबल है। दैट एनर्जी इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। तो खाली मैग्नेटिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने, आयरन को अट्रैक्ट करने में ही यूज नहीं करने है, वो तो फिर हमारे किसी काम का नहीं होगा। पर मैग्नेटिक एनर्जी को साइंटिस्ट ने ऐसे करा है कि हम उसको कन्वर्ट करके बहुत सारे डिफरेंट काम में उसको ला सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या क्या काम में आ सकता है, कैसे हम उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक एनर्जी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी जिसके वजह से हम सुन पाते हैं, दैट इज़ साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड एनर्जी मेनली वेव फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है तो साउंड एनर्जी इनिशिएट होता है, वहीं से वाइब्रेशन से वो एनर्जी वेव शुरू होता है, ओरिजिनेट होता है और वो ट्रांसफ़र होता है, तब जाके हम सुनते हैं। तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है, और मीडियम के थ्रू वेव फ्लो होके, प्रोपागेट होके हमारे तक पहुंचता है, कानों तक, तब हम उसको सुनते हैं। तो साउंड एनर्जी भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमने सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मास को हम कन्वर्ट करके एनर्जी बना सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में वन टाइप ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, ये जो मास और एनर्जी वाला रिलेशनशिप है और ये इन्वेंशन जो है ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, और मास को हम कन्वर्ट करके बहुत सारा एनर्जी हमें मिल सकता है, तो उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मास होता है उसको हम कन्वर्ट करके एनर्जी बनाते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी थे जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे होता है? जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो हमने बहुत सारे एग्जांपल हमारे चारों ओर देख सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, वाटर किसी बड़े हाइट में है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, हम उसको उस हाइट से अगर गिराएंगे तो वो जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें डैम में जो होता है वाटर डैम में, वो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में। वो जब फ्लो होता है बड़े हाइट से आके तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन, उसको टर्बाइन घुमाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो टर्बाइन घूमता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उस टर्बाइन के साथ कॉयल अटैच्ड होता है तो वो कॉयल घूमता है एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो दो मैग्नेट के अंदर रहता है कॉयल, कॉयल जब घूमता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो आपको देता क्या है, आपको मिलता है वहाँ से लाइट एनर्जी, वो जलता है तो आपको लाइट मिलती है। और इलेक्ट्रिक हीटर जिसमें आप खाना बनाते हैं उसमें आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं पर आपको मिलता है हीट एनर्जी, मेनली हीट एनर्जी के लिए ही आप उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पहले कुएं से पानी कैसे निकालते थे, हाथ से अपना मैकेनिकल मैन्युअली निकालते थे तो मैकेनिकल एनर्जी होता था, बट अब कैसे निकालते हैं, मोटर चला दिया। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया थ्रू मोटर, इलेक्ट्रिक पंप और मोटर। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक सेल में होता है उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल में सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे ही वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और टोटल एनर्जी जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, तो उसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक जो टर्म के बारे में हम बात कर रहे थे, पावर, हाउ क्विकली ये वर्क इज़ डन, तो उसको हम पावर कहते हैं। घर में बहुत सारी बातें होती है आपके सराउंडिंग में कि 1 HP मोटर से पानी जल्दी निकल जाएगा, 1/2 HP में जितना टाइम लगेगा 1 HP में उससे जल्दी निकल जाएगा, तो ये HP एक पावर की यूनिट है। तो पावर किसको हम कहेंगे, पावर इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना जल्दी काम होता है उसी सेम वर्क को कितनी जल्दी करते हो, वो पावर है। पावर इज़ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो SI यूनिट ऑफ पावर इज़ जूल बाय सेकंड और वाट, 1 watt इक्वल टू 1 joule डिवाइडेड बाय 1 second। तो इसका एक हायर यूनिट है जो हॉर्स पावर है, 1 HP जिसको आप कहते हैं, 1 horsepower इक्वल टू 746 watt, तो ये एक हायर यूनिट है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में HP कहा जाता है। और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं उसका सबका पावर रेटेड होता है, पावर रेटिंग सबका होता है, बल्ब का भी होता है पर वो वाट में होता है, 50 वाट। पहले जो बल्ब आते थे 50 वाट, 100 वाट, 60 वाट ऐसे। अब तो आप ऐसे कम वाट के आते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव करते हैं तो कम वाट के बल्ब जलाते हैं, लेकिन जो आपके मोटर वगैरह आते हैं तो उसमें हमारी जो रेटिंग होती है वो एचपी में होता है, 1 HP, 1, 2.5 HP। तो जितना ज़्यादा HP है उतना फास्टर वर्क करता है, आपको उतना ज़्यादा वर्क देता है। तो ये था हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, और हमने इसमें वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में ही डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस चैप्टर को लेके तो आप हमें पूछ सकते हैं।